to a new day, a new way. Dancing comes the new man, and so I sing.
Tosho celebration. Join the caravanserai of life. Tosho celebration. Join the caravanserai of love. Moving like white clouds into the light. 10,000 Buddhas are here tonight. A message from the rising sun. Forget all tomorrows, they never come.
नमस्ते फ्रेंड्स, ओशो रेडियो में हम सबका हार्दिक स्वागत। आज का एपिसोड समर्पित है जुलाई मंथ के फुल मून, जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। ओशो ने अपने अनेक हिंदी डिस्कोर्सेस में गुरु पूर्णिमा के ऊपर बोला है। आज के एपिसोड में हमने डिस्कोर्स काहे होत अधीर वॉल्यूम नंबर 3 से लिया है, जिसमें ओशो हमें असली गुरु की पहचान बता रहे हैं।
Yeah. तुमने क्यों वह गीत सुनाया जिसकी लय में सोए हुए थे मेरे मन के राग, तूफान उठे जीवन सागर में फैला दुख का झाग, दुख की लहरों ने उठ उठकर सुख और चैन बहाया, तुमने क्यों वह गीत सुनाया। सपने छोड़ गए नैनों को छाया एक अंधेरा, एक भयानक चिंता ने है मेरे मन को घेरा, फूटे ऐसे भाग कि जिसने ऐसा दिन दिखलाया, तुमने क्यों वह गीत सुनाया। बादल के कोहरे से निकली चंद्रमा की नैया, धीरे धीरे चलती जाए कोई नहीं है खिवैया, तारों ने चमकीला सा आकाश पे जाल बिछाया, तुमने क्यों वह गीत सुनाया। तैर रही है शांति की लहरों पर जीवन की नैया, तुम ही थे पतवार पति और तुम ही नाव खिवैया, दुख की ऐसी चली हवाएं भंवर में आन फसाया, तुमने क्यों वह गीत सुनाया। सुबह सवेरे पवन ने फूलों के तलवे सहलाए, जागे नींद के माते जब सबनम के मुंह धुलाए, कली कली को देकर छींटे ओस ने आन जगाया, तुमने क्यों वह गीत सुनाया। फूल खिले थे डाली डाली सुंदर रंग रंगीले, धानी सुर्ख गुलाबी कारे उदे नीले पीले, एक कमल था आशा का सो वो भी अब कुम्हलाया, तुमने क्यों वह गीत सुनाया। सुबह का तारा खुश्क सी टहनी के पीछे मुस्काए, करवट लेकर याद पिया की रह रह कर तड़पाए, मन में दुख की बदली उठी नैनन मेह बरसाया। तुमने क्यों वह गीत सुनाया? भक्तों को सुनोगे, उनके गीत को सुनोगे तो पीड़ा जगेगी, विरह की अग्नि भपकेगी। भक्त तो अपने शब्द तुम्हारे भीतर ईंधन की तरह डालते हैं कि तुम्हारे भीतर एक आग भभक उठे, ऐसी आग जो परमात्मा के सिवा फिर कोई और ना बुझा सकेगा। गुरु जिस आग को लगाता है, परमात्मा उस आग को बुझाता है। सदगुरु वही है जो तुम्हारे भीतर आग लगा दे, लेकिन तुम तो गुरुओं के नाम पर उनके पास जाते हो जो तुम्हें सांत्वना देते। आग नहीं, संतोष देते हैं, सत्य नहीं। थपकियां देते हैं, लॉरी सुनाते। परदेश बसे पिया की याद नहीं दिलाते। संतों से तुम्हारी आशा यही होती कि वहां जाएंगे तो थोड़ा संतोष, थोड़ी सांत्वना। एक मित्र का बेटा गुजर गया, वो मेरे पास आए और कहा कि संतोष के लिए आया हूं, सांत्वना के लिए आया हूं, बड़ा पीड़ित हूं। जवान बेटा चल बसा। मैंने कहा फिर तुम गलत जगह आ गए, फिर तुम्हें कहीं और जाना था। बहुत साधु संत हैं इस देश में, कोई कमी? और मैं तो उन साधु संतों की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा हूं। कुंभ का मेला करीब था, मैंने कहा तुम कुंभ के मेले चले जाओ, वहां जितना सांत्वना जितना संतोष चाहिए देने वाले मिल जाएंगे, साधु संत पंडित पुरोहित। मेरे पास आए हो तो मैं तो तुम्हें और आग दूंगा। मैं तो तुमसे यह कहूंगा कि बेटा तो चल बसा, जरा सोचो कि जब बेटा तक चल बसा तो बाप होकर तुम कितनी देर बचोगे। वो तो एकदम नाराज हो गए कि आप भी क्या बात करते हैं, मैं परिपूर्ण स्वस्थ हूं, सब तरह ठीक हूं, और ऐसी अपशगुन की बात करते हैं। लोग ये सुनना नहीं चाहते कि तुम भी नहीं बचोगे। मैंने उनसे कहा तुम चाहे सुनो चाहे ना सुनो, मैंने तो कह दिया, कान में तुम्हारे पड़ भी गया, याद भी तुम्हें रहेगा, भूल भी ना सकोगे, तुम बचोगे नहीं, कोई नहीं बचता। बेटा याद दिला गया है, इस अवसर पर तुम क्यों सांत्वना खोज रहे हो? परमात्मा को खोजो, सांत्वना को नहीं। उसको खोजो जो कभी नहीं मरता। अमृत को खोजो, मृत्यु याद दिला गई। बेटा मर गया, बेटा तुमसे ज्यादा स्वस्थ था या नहीं? उन्होंने कहा यह बात तो ठीक है। कौन सी बीमारी थी बेटे को? कोई बीमारी ना थी, अचानक हृदय गति बंद हो जाने से मृत्यु हुई। मैंने कहा बेटा मर गया, केवल 45 साल का था, तुम 75 साल के हो, तुम अभी ये आशा बांधे बैठे हो कि जियोगे। मगर लोग सांत्वनाएं चाहते। वो एमपी थे, संसद के सदस्य थे, सबसे पुराने सदस्य थे, संसद के पिता कहे जाते थे, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से वो पार्लियामेंट के सदस्य थे। वो कोई 50 साल से पार्लियामेंट के सदस्य थे, पहले अंग्रेजों की पार्लियामेंट के सदस्य रहे, फिर कांग्रेस के सदस्य रहे, मगर सदस्य थे। इस 50 साल में एक बार भी वो हारे नहीं, बड़े धनी थे, सुविधा थी, सब व्यवस्था थी। दिल्ली गए, वहां आचार्य तुलसी को मिले। आचार्य तुलसी ने आंख बंद की और कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा बेटा सातवें स्वर्ग में देवता होकर पैदा हुआ है। चित्त उनका बाग बाग हो गया। इसको कहते हैं सांत्वना, इसको कहते हैं संतों का मिलना। मेरी उन्हें याद आई होगी कि मैं कि बोला कि तुम भी ना बचोगे, और ये है संत एक कि जिसने फौरन आंख बंद की, सूक्ष्म लोक की यात्रा की, फौरन खबर लाया कि साथ में लोग वापस लौट के जब आए तो मुझसे कहा कि इसको कहते हैं संतत्व। आचार्य तुलसी में मेरी बड़ी श्रद्धा जग गई। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि उन्होंने जल्दी से आंख बंद की, बड़ी अद्भुत उनकी क्षमता है, एक क्षण नहीं लगा, एकदम साथ में स्वर्ग लौट के आए और बोले कि तुम्हें चिंता की कोई बात ही नहीं, तुम्हारा बेटा साथ में स्वर्ग में देवता हुआ। मैंने कहा कि अब मैं आपको एक और संत का नाम सुझाता हूं, मेरे एक परिचित फकीर थे राम उनका नाम। मैंने कहा आप इलाहाबाद कभी जाएं तो राम से मिल लेना। वो बहुत पहुंचे फकीर हैं, तुलसी उनके मुकाबले कुछ भी नहीं, तुलसी तो केवल सातवें तक जाते हैं, वो 700 तक यात्रा करते। तुलसी जी की यात्रा कोई बड़ी यात्रा नहीं, सातवें स्वर्ग तक तो कोई भी चला जाता है, तो छोटे मोटे संतों का काम। उन्होंने कहा क्या 700 स्वर्ग होते? मैंने कहा 700 स्वर्ग और 700 नरक। वो राम उस धंधे में बहुत कुशल है। इस बीच राम मुझे मिलके गए थे तो मैंने उन्हें समझा दिया था कि तुम क्या क्या कहना। वो गए राम से भी मिले, राम ने आंखें बंद की, डोले, हाथ पर हिलाए, उठ के खड़े हो गए, प्रभावित हुए इससे कि तुलसीदास तुलसी तो बस सिर्फ बैठ के एक मिनट में आंख खोल दिए थे और ये आदमी जरूर कहीं जा रहा है। चक्कर मारा, खड़े हुए, आंख बंद की, खोली, ऊपर देखा, आकाश की तरफ देखा, पाताल की तरफ देखा। सब उनको मैंने कहा था कि ये करना तुम। फिर उन्होंने कहा कि क्षमा करिए, सत्य कहूं कि सांत्वना दू? अब जब कोई ऐसा पूछे कि सत्य कहूं कि सांत्वना दू, तो किसकी हिम्मत जो कहे कि सांत्वना दो सत्य ना कहो? तो उन्होंने कहा सत्य ही कहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़का प्रेत हो गया है और तुम्हारे गांव से 7 मील दूर फला फला नाम के गांव में एक बगीचा है, उसमें पीपल के एक वृक्ष पर निवास कर रहा है। उन्हीं का बगीचा था। मैंने सब उनको पता दे दिया था कि कहां का नाम, पीपल का वृक्ष। वो तो बहुत घबरा गए, लौट के मुझसे आया, कहां भिजवा दिए, इस आदमी ने सब खराब कर दिया। और ये आदमी सच्चा भी मालूम पड़ता है क्योंकि ठीक ठीक 7 मील ही दूर गांव है और गांव का नाम और बगीचा और पीपल का झाड़ है। वहां पीपल का झाड़, बड़ा पीपल का झाड़, बहुत प्राचीन, और उसी पर वो कहता है कि तुम्हारा लड़का भूत हो गया। अब मैं कभी अपने उस गांव भी ना जा सकूंगा डर के मारे। वो बगीचा बेचना है हमें, उसे निकाल ही देना ठीक है। और वो इतने डरने लगे कि बेटा भूत हो गया, और 7 मील कोई लंबा फासला, भूतों के लिए क्या 1 सेकंड में आ जाए। मैंने उनसे कहा आप जाओ या ना जाओ, बेटा आ सकता है। आप रात ताला कुंजी लगा के ठीक से सोया करें, किसी दिन आके उधम मचा दे, झंझट खड़ी कर दे। पर उन्होंने कहा कि आपने भेजा क्यों इस आदमी के पास? मैं तो तुलसी जी से बिल्कुल सहमत हो गया था। मैंने उनसे कहा कि न तुलसी जी सही हैं, न वो राम सही है। राम ने जो भी कहा वो मेरा सिखाया हुआ है, और तुलसी जी ने वही कहा जो आप सुनना चाहते थे, वो आपका सिखाया हुआ है। सीधी सी बात इतनी है कि मृत्यु अनिवार्य है, तुम्हें भी मरना होगा, तैयारी करो। बेटा तो गया, तुम तैयारी करो। नहीं सुना, मेरे पास आना जाना कम कर दिए। ऐसे आदमी के पास कोई जाता है जो बार बार, क्योंकि जब भी वो आते मैं उनको याद दिलाता, तैयारी शुरू की या नहीं, क्या इरादे हैं, सदा रहोगे? आखिर मर गए। मरते वक्त जो उनके पास थे उन्होंने मुझे कहा कि आपकी मरते वक्त याद की, और कहा काश मैंने उनकी सुनी होती, लेकिन सुनना तो दूर, मैंने उनके पास भी जाना बंद कर दिया। काश मैंने उनकी सुनी होती तो आज शायद कुछ लेके जाता, खाली हाथ जा रहा हूं। लेकिन लोग सांत्वना चाहते हैं, इसलिए पलटू दास कहते हैं, पलटू दास के शब्द विरह के सागर हो। याद रखना, नाराज ना हो जाना, ये तो विरह के सागर है, लेकिन जो विरह के सागर में डुबकी लगाएगा वो मिलन के सागर को उपलब्ध हो जाता है। प्रेम बांध जोगी मारल हो कसके ही अमोर। पलटू दास कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मेरे गुरु ने मेरे साथ किया। प्रेम बांध जोगी मारल हो कसके ही अमोर। ऐसा कसके तीर मारा है मेरे हृदय में मेरे गुरु ने कि आर पार हो गया, वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। प्रेम बांध जोगी मारल हो कसके ही अमोर। जोगिया के लाल लाल अखियां हो जस कमल के फूल। जब मैंने अपने गुरु को देखा था और उनकी मदमस्त आंखें देखी थी, लाल लाल आंखें जैसे कमल के फूल खिले हो, तभी से मैं उनका दीवाना हो गया। वो मस्ती, वो आंखों में छाई हुई शराब, वो किसी परलोक का नशा, वो खुमार, वो उनकी चाल, वो उनका उठना, वो उनका बैठना। जोगिया के लाल लाल अखियां हो, उनकी आंखें लाल थी, किसी रंग में डूबी थी, जैसे सुबह का सूरज आंखों से निकल रहा हो, कि जैसे प्रभात प्राची पर फैली हो। जस कमल के फूल, जैसे कमल के लाल लाल फूल, ऐसी उनकी आंखें। गैरिक रंग चुना है सन्यास का, इसीलिए ये मस्ती का रंग है, ये वसंत का रंग है, ये मदमाते लोगों का रंग है, ये पियकड़ों का रंग है, ये शराब का भी रंग है। जिन्होंने पिया है, जिन्होंने परमात्मा को थोड़ा सा भी पिया है, वे कहीं पैर रखते हैं और कहीं उनके पैर पड़ते हैं। प्रेम बान जोगी मारल हो कस के ही अमोर। जोगिया के लाल लाल अखियां हो जस कमल के फूल। हमरी सुरख चुनरिया हो दोनों भय तूल। और जो प्रेम बाण मार दिया तो हमारी चुनरिया भी सुरख हो गई, खून से रंग गई, फव्वारा छूट उठा। हमरी सुरख चुनरिया हो दोनों भय तूल। और जब गुरु की लाल आंखें जैसे कमल के फूल खिले हों और हमारी लाल चुनरिया, दोनों मिलके एक हो गए। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जोगिया के लेव मिरग छलवा हो आपन पटचीर। दोनों के सियब गुदरिया हो होई जाओ फकीर। और तब हम दोनों मिलके एक हो गए, उनकी मृगछाला और अपने फटे हुए वस्त्र दोनों को मिला के हमने गुदरिया बना ली। गुरु के साथ एकम एक हो गए, उनकी मृगछाला और अपने वस्त्र दोनों को सी के एक ही गुदड़िया बना ली। जब तक शिष्य गुरु एक ही ना हो जाए, फासला ही ना बचे, दूरी ही ना बचे, भेद ही ना बचे, संदेह शंकाएं तर्क वितर्क विवाद बहुत पीछे छूट जाएं, तभी वह परम अनुभूति घटित होती, तभी वे द्वार रहस्यों के खुलते। गगना में सिंगिया बजाई हो ताकिन मेरी ओर, और जब ऐसी एकता घटी तब गुरु ने गगन में चढ़ के नाद किया। गगना में सिंगिया बजाइन हो ताकिन मोरी ओर, आकाश से मेरी तरफ देखा, सारा आकाश जैसे मुझे देखने लगा, जैसे सारा आकाश मेरा गुरु हो गया, जैसे सारे आकाश के तारे मेरे गुरु की आंखें हो गए, और आकाश में जो अनाहत का नाद है वो मुझ पे बरसने लगा। गगना से सिंगिया बजाइन हो ताकिन मेरी ओर, और तब पहली दफे मैंने देखा कि जिसमें मैं डूब गया हूं वो मेरा गुरु ही नहीं, वह परमात्मा भी है। अकारण नहीं है कि शिष्यों ने अपने गुरु को परमात्मा कहा है, अकारण नहीं है कि कबीर ने कहा गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु अपनी गोविंदियो बताए। गुरु इशारा है सिर्फ, एक द्वार जिससे पार होकर परमात्मा मिलता है। चंचल बादल झूम के छाए, गाए मन मतवाला, पल पल आंचल उड़े हवा में छलके रूप का प्याला, मीठे मीठे गीत सुनाए ये नदिया का शोर, उड़ता बादल देख देख के नाच उठा मनमोर, सावन की अलबेली रुत ने कैसा रंग निकाला, चंचल बादल झूम के छाए गाए मन मतवाला, यूं मेरी मखमूर जवानी हवा में तीर चलाए, जैसे एक अनदेखा सपना आंखों में लहराए, बिना मीत के प्रीत निभाऊं मेरा प्यार निराला, चंचल बादल झूम के छाए गाए मन मतवाला, एक अनदेखे प्यार को मेरा प्यार भरा दिल तरसे, छाई है घनघोर घटा पर क्या जाने कब बरसे, सोच रही हूं किसे बनाऊं जीवन का रखवाला, चंचल बादल झूम के छाए गाए मन मतवाला। जल्दी ही रोना गाने में बदल जाता है, जल्दी विरह की अग्नि से ही मिलन के कमल खिल उठते, लेकिन तैयारी चाहिए, डूबने की तैयारी, गुरु की मस्ती में मस्त हो जाने की तैयारी। गगना में सिंगिया बजाइन हो ताकिन मोरी ओर, चितवन में मन हर लियो हो जोगिया बड़चोर, और वो जो आंखें आकाश से मेरी तरफ झांकी, मेरा हर लिया मन जोगिया बड़चोर, गुरु बड़ा चोर निकला। हम तो भगवान को भी चोर कहते, हरि का अर्थ होता चोर, हर लेने वाला। दुनिया की किसी भाषा में भगवान के लिए ऐसा प्यारा शब्द नहीं है जैसा हमारी भाषा में हरि, हरि का कोई मुकाबला ही नहीं। अच्छे अच्छे शब्द हैं, मुसलमानों के पास 100 शब्द हैं, अच्छे अच्छे शब्द हैं, करुणावान, दयावान, रहीम, रहमान, न्यायकर्ता, बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं, मगर हरि के मुकाबले एक भी नहीं, 100 ही शब्द फीके पड़ जाते। चोर, ये प्रेम की भाषा हुई, वो ज्ञान की भाषा, न्यायकर्ता, करुणावान, दयावान इत्यादि इत्यादि, वो भाषा बुद्धि की। जितनी अच्छी अच्छी बातें सब परमात्मा को बता दी, लेकिन प्रेमी एक बात जानता है कि वो हमारे हृदय को चुरा लेता है। इससे बड़ा उसका और कोई गुण नहीं, और सब गुण पीछे आते हैं। पहले तो ये घटना घटती कि वो हमारे हृदय को चुरा लेता है, पूछता भी नहीं और चुरा लेता है, आज्ञा भी नहीं लेता और चुरा लेता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब चोरी हो गई, जेब कट जाती है तब पता चलता है। बड़ा कुशल चोर है, और गुरु तो केवल उसका प्रतिनिधि है, तो गुरु की भी कला चुराना है, चोरी है। गंग जमुन के बिचवा हो बह झिरझिर नीर, तेही ठैया जोरल सने यहा हो हरि ले गयो पीर। गंग जमुन के बिचवा हो बहे झिरझिर नीर, इस प्रतीक को समझना। प्रयाग को हम महातीर्थ कहते हैं, ये भौतिक प्रयाग से प्रयोजन नहीं, भौतिक प्रयाग तो केवल प्रतीक है। एक आध्यात्मिक बात को प्रकट करने का उपाय है। कहते हैं प्रयाग में तीन नदियों का मिलन हो रहा है, गंगा यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना दिखाई पड़ती, सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती। सरस्वती अदृश्य है, ऐसी ही दशा प्रत्येक व्यक्ति की। प्रत्येक व्यक्ति प्रयागराज, उसमें भी तीन धाराओं का मिलन हो रहा है। देह दिखाई पड़ती, मन भी दिखाई पड़ता है, ये गंगा यमुना, और इन दोनों के बीच में झरझर नीर बह रहा है चैतन्य का, वो दिखाई नहीं पड़ता। उस चैतन्य का नाम ही सरस्वती है, इसलिए सरस्वती को हमने ज्ञान की देवी कहा है, प्रज्ञा की देवी। गुरु ने पहचान करवा दी, गंगा जमुना को अलग छांट के बता दिया, और दोनों के बीच में छिपी हुई अदृश्य चेतना की धार साक्षी से मिलन करवा दिया। गंग जमुन के बिचवा हो बहे झिरझिर नीर, तेई ठैया जोरल सनेहिया हो हरि ले गयो पीर। गुरु ने उसी ठाव से हमें जुड़ा दिया, उसी मंजिल पर पहुंचा दिया, उस अदृश्य अगोचर अनिर्वचनी, उसको ठैया कहा है, ठाव कहा है। तेई ठैया जोरल सनेहिया, और कला यह है गुरु की कि प्रेम के माध्यम से उस ठाव तक पहुंचा दिया, उस अदृश्य से अनिर्वचनी से मिलन करवा दिया, वो भी प्रीति से प्रेम से। तेई ठैया जोरल सनेहिया हो हरि ले गयो पीर, और हमारे हृदय को ही नहीं चुरा के ले गया, उसी चोरी के साथ एक चोरी और भी हो गई, हमारी सारी पीर हमारी सारी पीड़ा भी चुरा के ले गया, पीछे रह गया सिर्फ आनंद का एक सागर। जोगिया अमर मरे नहीं हो पुजवल मोरी आस, और जिसने भी इस योग को जान लिया, इस मिलन को जान लिया, योग का अर्थ होता है मिलन, जिसने भी स्वयं के और परमात्मा के मिलन को जान लिया, उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं, वह अमृत को उपलब्ध हो जाता है। जोगिया अमर मरे नहीं हो पुजवल मोरी आस, कर्म लिखा बर पावल हो गावे पलटू दास। पलटू दास कहते हैं घबराना मत, रास्ता अंधेरा हो चिंता न लेना, कंट का कीण हो लौट मत जाना, विरह की अग्नि सताए, घबरा मत जाना। ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है परमात्मा से मिलना, ये तुम्हारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। कर्म लिखा बर पावल हो, वो प्यारा मिलेगा, ये तुम्हारी किस्मत में लिखा है। देर अबेर तुम चाहो कितनी ही करो, वो प्यारा मिलेगा, ये तुम्हारा अधिकार है। कर्म लिखा बर पावल हो, ये विवाह होगा, हां तुम चाहो तो स्थगित कर सकते हो बहुत दिनों तक, जन्मों जन्मों तक, वो तुम्हारी स्वतंत्रता है। लेकिन एक दिन ये विवाह होगा, फिर क्यों देरी करते हो? विवाह होने दो, ये रास रचने दो, ये प्रीति जगने दो। इस प्रीति के जगने के बाद, इस मिलन के होने के बाद, तुम पहली दफे जानोगे जीवन का अर्थ, पहली दफे जानोगे जीवन की महिमा, पहली दफे जानोगे जीवन का काव्य संगीत, जीवन का महोत्सव। ओ तंबूर बजाते राही, गाते राही, जाते राही, साजन देश को जाना। मंडली मंडली, चौखट चौखट, झाझिन झाझिन, डिग तट मन की तान उड़ाना। लेकिन मेरे दुखों के साझी, मेरे दर्द न गाना। ओ तंबूर बजाते राही, गाते राही, जाते राही, साजन देश को जाना। सोच भरे मुख जहर पिए मन, उनकी आस बंधाना। झनन झनन झन, झनन झनन झन, गीत मिलन के गाना। गली गली में सावन रुत की मस्त पवन बन जाना। ओ तंबूर बजाते राही, गाते राही, जाते राही, साजन देश को जाना। जीवन का एक ही लक्ष्य हो, साजन देश को जाना। ओ तंबूर बजाते राही, गाते राही, जाते राही, साजन देश को जाना। और कोई चीज इस परम लक्ष्य में बाधा ना बने, धन पद प्रतिष्ठा। और कोई चीज इस परम लक्ष्य में बाधा ना बने, परिवार परिजन मित्र। और कोई चीज इस परम लक्ष्य में बाधा ना बने, इसका स्मरण रखना। हजार बाधाएं, हजार प्रलोभन, तुम्हारी अवस्था ऐसी जैसे छोटे से बच्चे की मेले में हो जाती, जहां खिलौनों ही खिलौनों की दुकानें लगी। इस दुकान की तरफ खींचता है कि ये खिलौना खरीद लूं, उस दुकान की तरफ खींचता है कि वो खिलौना खरीद लूं, सारे खिलौने खरीद लेना चाहता है। ऐसी तुम्हारी दशा है, संसार मेला है, दुकानों पर खिलौने ही खिलौने टंगे, तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौने, मन भावक खिलौने, मगर सब खिलौने हैं। कितने ही खिलौने खरीद लो, सब टूट जाएंगे, सब यहीं पड़े रह जाएंगे, और तुम्हें खाली हाथ जाना होगा। और खाली हाथ नहीं जाना है, कष्ट करो, संकल्प लो खाली हाथ नहीं जाना है। ओ तंबूर बजाते राही, गाते राही, जाते राही, साजन देश को जाना। मंडली मंडली, चौखट चौखट, झाझिन झाझिन, डिग तट मन की तान उड़ाना। लेकिन मेरे दुखों के साझी, मेरे दर्द न गाना। ओ तंबूर बजाते राही, गाते राही, जाते राही, साजन देश को जाना। सोच भरे मुख जहर पिए मन, उनकी आस बंधाना। झनन झनन झन, झनन झनन झन, गीत मिलन के गाना। गली गली में सावन रुत की मस्त पवन बन जाना। ओ तंबूर बजाते राही, गाते राही, जाते राही, साजन देश को जाना। आज इतना ही। Thank you.
आज के एपिसोड में हमने म्यूजिक, मिलारेपा देवा प्रेमल, म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो से और आखिर में एक लाइव रिकॉर्डेड ओशो कीर्तन में हम लोग उतरेंगे, झूमेंगे। साथ ही ओशो रेडियो के एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
हर युग में, हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। हर युग में तुम जैसों को आना
टूटे या खिलौने
जन्म मृत्यु से तुम न गिरे।
मेरे नाम रूप से तुम हो परे जन्म मृत्यु से तुम न गिरे
जन्म मृत्यु से तुम न गिरे जन्म मृत्यु से तुम न गिरे
फिर भी करुणावश जग में फिर भी करुणावश जग में उतरना
आना।